بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جی بات چل رہی تھی کبر کا علاج، تکبر کا علاج، تو اس میں گزشتہ شیطان کا واقعہ بتایا تھا کہ شیطان بھی بہت ساری گٹھریاں اپنی کمر پر اٹھا کر لے کے جا رہا تھا، کسی شخص نے اس کو خواب میں پوچھا کہ کیا ہے، تو اس میں ساری گندگیاں تھی، تو فرمایا کس کو دیں گے، تو انہوں نے بتایا حب جا اور تکبر یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کو دوں گا میں، کہ ان کے اندر حب جا تکبر ہے اور باقی حسد ہے، یہ سب کچھ وہ بیچنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو بہرحال یہ علم ایک تو بذات خود فی نفسی ہی طالب علو ہے، علم جو ہے علم اس کے اندر بلندی ہے، کوئی بھی علم ہو، اس لیے صاحب علم کے اندر تکبر پیدا، صاحب علم کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. دوسری آفت اس علم میں یہ ہے کہ لوگ حامل علم دین کی عزت کرتے ہیں، دوسرے خصوصاً علم دین کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی اس کے لیے عزت سے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی اس کے لیے ہدیہ لا رہا ہے، کوئی دعوت کر رہا ہے. ان افعال کے نتیجے میں وہ علم والا اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہے، ہم بھی کچھ ہے، کہ ہم بھی کچھ ہے. یہ اتنی ساری مخلوق جو ہماری عزت کر رہی ہے، ہمارے پیچھے پھر رہی ہے، آخر کچھ تو ہمارے اندر کمال ہوگا، جبھی تو ہے. کچھ تو کمال ہوگا جبھی تو پھر رہے. یہ ایک لالچی کا واقعہ سنیے. چنانچہ اہل علم کی ایک مثال دیتے ہوئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اشعب تمع ایک بہت لالچی انسان تھا. لالچی جس کے اندر حرص ہوتی ہے، اب اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور ملے اور ملے، اس کو لالچ کہتے ہیں. تو گریڈی، جی جی سمجھ گیا. تو بس یہ ایک بہت لالچی انسان تھا، اس کا نام تھا اشعب تمع. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، بچے اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گئے. ان بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اب بچے اس کو چھیڑنے لگے، تو ان بچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے بچوں سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، ارے فلاں جگہ جاؤ، وہاں تو مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے. اب بچوں کو ذرا گمانا تھا کیونکہ اس کو ستا رہے تھے، مجھے ستانا چھوڑ دے. تو کیا فرمایا، فرا فلاں جگہ جاؤ، وہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی. چنانچہ بچے سارے کے سارے اس کی بات کو سننے اس طرف بھاگے. جب بچے بھاگے تو خود بھی بچوں کے پیچھے بھاگنے لگا، خود بھی بچوں کے پیچھے بھاگنے لگا. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو، اس نے کہا کہ سب بچے بھاگ رہے ہیں تو ضرور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہوگی، جبھی تو میں بھاگ رہا ہوں. اب دیکھا کتنی بچوں کو اس نے بھگایا، اور پھر دل میں کیا خیال آیا، ارے ہو سکتا ہے حقیقت میں ہو رہی ہوگی تو میں رہ نہیں جاؤں. تو فرمایا وہ خود بھی بھاگنے لگا، ضرور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہوگی. تو ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ پہلے اپنے علم کے ذریعے مخلوق کو دھوکا دیا، پہلے اپنے علم کے ذریعے مخلوق کو دھوکہ دیا، اس دھوکہ دینے کے نتیجے میں جب مخلوق ہماری معتقد ہو گئی، اب کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی دعوت کر رہا ہے، کوئی ہدیہ لا رہا ہے، کوئی علامہ کا لقب دے رہا ہے، تو اب دماغ میں خیال آیا کہ جب اتنی ساری مخلوق ہمارے پیچھے چل رہی ہے اور ہمارے معتقد ہو رہی ہے، تو ہمارے اندر ضرور کوئی وصف ہوگا جس کی وجہ سے ساری مخلوق ہماری معتقد ہو رہی ہے. معتقد یعنی ہماری مرید ہو رہی ہے، ہمیں مان رہی ہے. زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو، اس کے نتیجے میں وہ عالم اور زیادہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. علم پر شکر ادا کرے، علم پر شکر ادا کرے. لہذا جو حضرات علم دین سے وابستہ ہے یا جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صفت عطا فرمائی ہے، ان کو اس کی بہت زیادہ فکر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بیماری پیدا نہ ہو جائے. کوئی خوبصورتی میں، کوئی زبان میں، کوئی علم میں، کوئی ڈگری میں، کوئی پتہ نہیں کس میں، ہر ایک اللہ نے جو بھی صفت عطا فرمائی ہے، تو فکر رکھنے کی ضرورت ہے کہیں بیماری پیدا نہ ہو جائے. اور اگر پیدا ہو جائے تو اس کا فوری علاج ضروری ہے. اس کا فوری علاج ضروری ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ اس علم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرے کہ یا اللہ، میں اس علم کا مستحق نہیں تھا، پھر بھی آپ نے عطا فرما دیا. یا اللہ، آپ کا شکر ہے. اس بات کا استحضار کرے کہ یہ علم ان کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے لے، میرا اس پر کوئی کنٹرول نہیں. قرآن کریم کا ارشاد ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ پہلے معلوم تھا، بعد میں سب رخصت ہو گیا اور اب کچھ بھی باقی نہیں. اگر انسان کے دماغ کا ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، تو ایک سیکنڈ کے اندر سارا علم، ساری معرفت، ساری تحقیقات سب ختم ہو جائے. لہذا انسان کس بات پر اترائے، کس بات پر ناز کرے، کس بات پر اکڑے. وہ دعا نہیں ہے، قرآن کریم کا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، سب کچھ پہلے معلوم تھا، بعد میں سب رخصت ہو گیا. تو فرمایا یہ علم ان کی عطا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دی ہوا ہے، دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، میرا اس پر کوئی کنٹرول نہیں. تو سب کچھ پہلے معلوم تھا، بعد میں سب رخصت ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے لے لیتا، اور اب کچھ بھی باقی نہیں. اگر انسان کے دماغ کا ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، تو ایک سیکنڈ کے اندر سارا علم، ساری معرفت، ساری تحقیقات سب ختم ہو جائے. لہذا انسان کس بات پر اکڑے، کس بات پر ناز کرے، کس بات پر فخر کرے، سب کچھ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، اس چیز کو سوچے. دیکھو، عالم اور شیخ کے درمیان فرق، عالم اور شیخ کے درمیان فرق. اسی وجہ سے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے وقت میں علم کے پہاڑ تھے، نانوتوی اور گنگوئی رحمت، لیکن اپنی اصلاح کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، جو ضابطے کے پورے عالم بھی نہیں تھے. تو دیکھو، یہ لوگ علم کے پہاڑ تھے، اور ان کا جو شیخ تھے وہ حاجی امداد اللہ ہے، اور وہ باقاعدہ پورے عالم بھی نہیں تھے. پورے عالم نہیں تھے. تو دیکھا، عالم اور شیخ میں فرق. تو بڑے بڑے عالم، اور کیسے عالم، پہاڑ جیسا علم، یعنی زبردست علم والے، ایسے شیخ کے پاس اپنی اصلاح کرانے جا رہے ہیں جو باقاعدہ عالم نہیں ہے. تو لوگوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت نانوتوی تو عالم تھے، تو لوگوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت، یہ کیا قصہ ہوا کہ الٹا معاملہ ہو گیا؟ ان کو چاہیے تھا، یعنی جو عالم نہیں ہے ان کو چاہیے تھا وہ آپ کے پاس آتے، اس لیے کہ آپ عالم ہیں اور وہ عالم نہیں ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کے پاس چلے گئے؟ اللہ، جواب سنے، ایک سوال تھا. लोगों ने पूछा, जवाब में हजरत नानुत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारी और उनकी मिसाल ऐसी है, हमारी और उनके हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स को मिठाई के बारे में पूरा इल्म पूरी तहकीक हासिल है। एक शख्स को मिठाई के बारे में पूरा इल्म पूरी तहकीक हासिल है, मसलन उसको गुलाब जामुन के बारे में मालूम है कि सबसे पहले किसने इजाद की, उसको बनाने वाला कौन है, कहां कहां से ये खाया जाता है और किन मुल्कों में ये पाया जाता है, किन चीजों से उनको बनाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होती है, इसके अज्जाए तरकीबी क्या क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं, उसको कैसे पकाया जाता है और कैसे तला जाता है, तो ये सारा बोले अगर किसी एक शख्स को मिठाई के बारे में पूरा इल्म और तहकीक है और अगर उससे कहा जाए तो ये सब कुछ उसको पता है, उससे कहा जाए कि तू गुलाब जामुन के फजाइल पर एक तकरीर कर दे और एक मकाला लिख दे, एक किताब, लेकिन उससे पूछा जाए कि तुमने कभी गुलाब जामुन खाई है तो जवाब में कहेगा कि मैंने कभी नहीं खाई, जानता सब कुछ हूं लेकिन खाई कभी नहीं। और उसके अलावा एक दूसरा शख्स है जिसको गुलाब जामुन की तारीख के बारे में कुछ पता नहीं कि किसने बनाया और किस तरह पकाई जाती है, और लेकिन रोजाना सुबह शाम गुलाब जामुन खाता है, तो फरमाया बताओ कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, बताओ उन दोनों में से कौन बेहतर है। तो वो बेहतर है जिसमें गुलाब जामुन पर जिसने जिसमें गुलाब जामुन पर किताब लिखने की सलाहियत है, या वो बेहतर है जो रोजाना सुबह शाम गुलाब जामुन खाता है। जाहिर है कि वो बेहतर है जो रोजाना सुबह शाम गुलाब खाता है, अगरचे उसकी तारीफ बयान नहीं कर सकता। फिर फरमाया हमारी मिसाल उस शख्स की सी है जिसको गुलाब जामुन की पूरी तारीख मालूम, उसकी लुगवी इस्तेलाही तारीफ जानता है लेकिन खाई कभी नहीं। हम लोग तो ऐसे है, और हाजी साहब वो है जो रोजाना खाते हैं। हाजी साहब वो है, जब हम हजरत हाजी साहब की खिदमत में गए तो हमने सिर्फ गुलाब जामुन की तारीख ही पढ़ी थी, खाया नहीं था। उन्होंने गुलाब जामुन उठाकर हमारे मुंह में रख दिया कि लो गुलाब जामुन खा लो, इसलिए हम हाजी साहब की खिदमत में गए थे। बहरहाल इल्म वाले को खास तौर पर इस बात की जरूरत है कि वो बातिन की इस्लाह कराए और किसी शेख से तरबियत हासिल करे। क्या मतलब, यानी कहना चाहते थे मिसाल देकर कि ये जो हाजी इमदादुल्ला और हजरत नानूती रहमतुल्लाह अलैह वो इल्म तो जानते थे, कुरान की एक एक आयत की तफसीर जानते थे, लेकिन दिल के अंदर यानी वो सुकून नहीं था, यानी उस पर वो अमल नहीं हुआ था। जानते थे, जानना ये इल्म है। फरमाया हाजी साहब के पास जाने के बाद उस पर हमारा अमल हो गया कि तमाम शरीयत हमारी तबीयत बन गई, वरना पहले तबीयत कुछ और थी, शरीयत कुछ और थी। शरीयत जानते थे लेकिन तबीयत शरीयत नहीं बनी थी। तो शरीयत यानी वही हुआ कि गुलाब जामुन जानते थे बनाना लेकिन खाया कभी नहीं है। तो वो इल्म सब जानते थे लेकिन सुकून और जिसमें यानी चैन और सुकून और वो अमल वो नहीं हुआ था, वो ताल्लुक अल्लाह का नहीं मिला था। अल्लाह के ताल्लुक के बारे में सब कुछ जानते थे कि कैसे किया जाता है, क्या वजाइफ होता है, क्या होता है, सब जानते, लेकिन मिला नहीं था। और उनके पास ताल्लुक था, उन्होंने हमें ताल्लुक दे दिया। जी अल्लाह ताला हम सबको इन बातों के पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो किब्र का इलाज चल रहा था ना, तो कई इलाज है। तो तकब्बुर का इलाज बताया, एक तो जूते सीधे करवाने से, ऐलान करवाने से, और एक इम्तिहान लिया जरा डांट डपट से। किब्र का एक इलाज और है, फरमाया किब्र का एक इलाज यह है कि अजमत हक सुबहानहु को पेशे नजर रखे, अल्लाह ताला की बड़ाई को सामने रखे। जिस मौका पर किब्र का अंदेशा हो उस वक्त तो जरूर, वरना और भी बेहतर यह है कि रोजाना एक वक्त उसके लिए निकाल ले। अब देखो हमारी दावत में क्या है कि अल्लाह की बड़ाई बोलो। जब अल्लाह की बढ़ाई बोलेगा तो इंसान अपने आप को छोटा समझेगा, अल्लाह की बड़ाई, और वो भी ध्यान के साथ जब बोलेगा तो उसको मजा आ जाएगा और उसके अंदर से किब्र निकल जाएगा। क्योंकि जब बड़ाई किसी के सामने होती है तो अपने आप को छोटा समझता है, और जब हमारे सामने जब कोई छोटा होता है तो हम अपने आप को बड़ा समझते, तो छोटे का तस्वुर आ जाता है फौरन, अपने आप को बड़ा समझते। जब बड़े का तस्वुर सामने होगा तो अपने आप को छोटा समझेगा। इसलिए जब अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे तो अल्लाह बड़ा है, अल्लाह देखने में बड़ा, अल्लाह सुनने में बड़ा, अल्लाह देखने पकड़ने में बड़ा, अल्लाह रहमत में बड़ा, अल्लाह जात में बड़ा, अल्लाह सिफात में बड़ा, ये सारी सिर्फ जो बड़ाई है उसको हम जितना बोलेंगे ना, और फिर उसका इस्तेजार रखेंगे तो हमारे अंदर खुद ब खुद तवाजो आती जाएगी। बड़ा तो वो है, मैं तो कुछ भी। इसलिए फरमाया दावत के अंदर अल्लाह की बड़ाई को खूब बोले, ये इलाज था। मैं बोला दावत कोई मामूली काम नहीं था, ये दावत तबलीग का जो काम था अब इसको तो हमने रस्मी बना दिया, वरना वाकईतन ये बहुत जबरदस्त, इसके अंदर हमारे उन बुजुर्गों ने कुरान और हदीस से ऐसे ऐसे उसूल रखे हैं कि जितनी बीमारियां हमारी है वो सारी बीमारियां अगर उस पर अमल करे तो निकल सकती, निकल सकती। लेकिन आज बीमारियां बढ़ रही है, वजह यह है कि उसूल से हट गए। तो फरमाया देखो अल्लाह की बड़ाई बहन को उस वक्त तो जरूर, वरना और भी बेहतर, रोजाना एक वक्त उसके लिए निकाल ले कि अल्लाह की बड़ाई को बोले या तस्वुर करे। किब्र का एक इलाज यह है कि इंसान अल्लाह जल्ल जलालहू की अजमत का इस्तेजार करे, उसके साथ अपनी बेवकती का इस्तेजार करे, उसके अलावा एक बुजुर्ग के जवाब का इस्तेजार करे, जो जवाब उन बुजुर्ग ने एक मुतकब्बिर को दिया था। एक मुतकब्बिर ने उस बुजुर्ग से कहा कि जानते हो, जानते नहीं हम कौन हैं, जो पहले भी गए, जानते नहीं हम कौन हैं। तो उन बुजुर्ग ने फरमाया कि मैं जानता हूं तू कौन है, तो इसको भी इस्तेजार करे कि हम कौन हैं, कि तेरी हकीकत यह है, अव्वलु का नुतफतुन मजीरतुन व आखिरु का जीफतुन कजीरतुन व अंत फीमा बैन ज़ालिक तहमलुल अज़ीरत। यानी तेरी इब्तिदा तो एक गंदा नुतफा है, तेरी इब्तिदा और तेरी इंतहा बदबूदार मुर्दा पर होने वाली है। तू ऐसी हालत में पहुंचने वाला है कि तेरे अजीज व अकारिब और रिश्तेदार भी तुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं होंगे। जरा बैठ कर उसको सोचे जी, कि हमारी इब्तिदा देखे कैसी है कि जिससे इंसान नफरत करता है, और हमारी इंतहा ऐसी है कि उससे भी नफरत करता है, कि इसको भगाओ, सारे रिश्तेदार कहेंगे उसको जल्दी ले जाओ, अब नफरत रखने को तैयार नहीं हो, बल्कि तुझे घड़े में फेंक आएंगे, इसलिए कि आकर तुझे और ज्यादा घर में रखा गया, अगर तुझे और ज्यादा घर में रखा गया तो घर में बदबू फैला देगा। ये कौन है? वही है जिससे मोहब्बतें करते थे, लेकिन अब इतना गंदा हो गया है कि बदबू को फैलाएगा। तो लिहाजा तेरी इब्तिदा और इंतहा तो ये है, और दोनों के दरमियान का जो जमाना है उसमें तो हर वक्त नजासत उठाकर फिर रहा है इंसान, नजासत भरा हुआ है उसके अंदर, सब नजासत ही भरी हुई है और उसको लेके चल रहा है। अल्लाह ताला ने इसके ऊपर जो खाल के जरिए पर्दा पोशी फरमा रखी, हमारे ऊपर चमड़ी डाल दी, जिल्द और खाल चढ़ा दी है, ये खाल अगर किसी जगह से छिल दी जाए तो अंदर से गंदगी बरामद हो जाएगी, कहीं से खून निकल आएगा, कहीं से पीप निकल आएंगे, कहीं से पेशाब निकल आएगा, कहीं से पाखाना निकल आएगा, पूरे जिस्म में गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस खाल के जरिए पर्दा पोशी फरमा रखी है। इस खाल के जरिए से अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी फरमा रखी है, जिसकी वजह से वो नजासत नजर नहीं आती। हजरत ताला फरमाते हैं, जब कभी तुम्हारे दिल में अपनी बड़ाई का एहसास पैदा हो तो जरा उस बात को सोच लिया करो कि मेरी इब्तिदा कहां से हुई और मेरा अंजाम क्या होगा। तो देखो अपनी तकब्बुर का एक इलाज क्या है, एक इलाज यह है कि अल्लाह की अजमत का, अल्लाह की बड़ाई का इस्तेहजार रखना और उसको बोलना भी, और उसके साथ साथ ये बुजुर्ग का कौल कि हमारी इब्तिदा क्या है, हमारी इंतहा क्या है, और दरमियान में हम क्या गंदगी लेके चल रहे हैं, तो बड़ाई आएगी जहां कहीं बैठे हो और तस्वुर आए कि मैं बड़ा, तो फौरन इस बात को सोचे, तो ये भी एक इलाज है जी। हाँ, हजरत फरमाते हैं कि एक कारामद नुस्खा बताता हूं, वो ये कि जब दिल में तकब्बुर पैदा हो, जब दिल में तकब्बुर पैदा हो उस वक्त अपनी इस हालत का तस्वुर कर लिया करो। जब कजाए हाजत के लिए बैठते हो, हाँ हर एक जाते हैं हाजत में, जब हाजत के लिए जाते हैं उस वक्त क्या हालत होती है और क्या शान होती है, बस सारा तकबर धरा रह जाएगा और पता चल जाएगा मेरी हकीकत तो ये है। उस वक्त भी सोचो कि देखो मेरी हकीकत ये है, कुछ भी नहीं, सब गंदगी, किसी के सामने जाहिर हो जाए तो सब भाग जाए, तो मैं कौन हूं, मेरे अंदर से तो ये चीजें निकल रही। बहरहाल अल्लाह जल्ले जलालू की अजमत का इस्तेहजार और अपनी बेवकती का इस्तेहजार करे, किस बात पर इंसान नाज करे, किस चीज पर फखर करे, न कोई चीज अपनी है, न अपनी ताकत से हासिल हुई, न अपने बल बूते पर बाकी रह सकती है, कोई चीज न अपनी है और न अपनी ताकत से हमने ली है और न अपनी ताकत से उसको बाकी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास। किसी के पास कितनी भी ताकत हो वो अपनी चीज को बाकी नहीं रख सकता, न ताकत से ली है, ताकत से ली हो तो ताकत से बाकी रखे, ताकत से ली नहीं है तो ताकत से बाकी भी नहीं रख सकता, और अपनी है नहीं तो जो कुछ हासिल है वो सब किसका है, वो सब किसी की अता है, वो उस अल्लाह की दी हुई नेमत है। तो ये है, तो एक इलाज ये भी है, क्या करना कि अपने आप को अल्लाह की बड़ाई का तस्वुर करे। यार एक इलाज क्या है, एक इलाज और बताया था कि इल्म पर शुक्र अदा करें, यानी तकब्बुर, अगर कोई भी अपनी बड़ाई हो, बड़ाई के लिए कोई खूबसूरती हो, कोई जबान हो, कोई माल हो, कोई हो, तो उस पर शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से भी किब्र खत्म होता है, तो शुक्र अदा करना, और उसके बाद बताया अल्लाह ताला की बड़ाई का इस्तेहजार करना, अपनी गंदगी का इस्तेहजार करना, मैं कौन हूं, तो ये देखो तकब्बुर के इलाज है। ये खुद ब खुद जो इलाज करना है ना, तो वो ऐसा है, एक तो जो मशाइख इलाज करते थे वो अलग अलग तरीके से करते थे, जो किसी के जूते सीधे करवा कर कराए, किसी को डांट कर, किसी को कोई और काम के जरिए, तो वो मशाइख ने किए, लेकिन ये अगर खुद ब खुद कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्र अदा करना बस, तो उसके जरिए से भी होगा, जब तक के शेख न मिले उस वक्त तक इस तरीके से करते रहे, अल्लाह ताला की बड़ाई का इस्तेहजार करे, अपनी अंदर गंदगी का इस्तेहजार करे, तो ये सारा इलाज। एक और इलाज भी है, फरमाया इलाज ही का एक जुज ये है कि कसदन ऐसे अफआल इख्तियार करे, जानबूझकर ऐसे काम करे जो उर्फन मुजीबे जिल्लत समझते हैं, यानी आम तौर पर जो जिल्लत वाले काम हो, यानी आवाम में गिने जाते हैं, पब्लिक में, तो फरमाया ऐसे कामों को जानबूझकर करे, तो क्या होगा, ये भी एक इलाज। हाँ, मुजीबे जिल्लत समझते और बिदुने उसके दूसरे इलाज नाकाफी है, तो ऐसा काम करेगा तो जाहिर बात है तो उसके जरिए उसकी बड़ाई निकलेगी, तो अब जिल्लत वाले काम हो सकता है कि मिसाल आए, यानी कसदन ऐसा काम इख्तियार करे जिसको आमतौर पर लोग जिल्लत का काम समझते हैं, मिसाल के तौर पर सामान उठाकर चलना, आज तो खादिम लेकर चलता है ना, अब हम खुद ही उठाकर चले, अब बाजार में चले गए खुद सामान लेने के लिए, या और कोई दूसरे ऐसे काम है कि जो हम खुद ही करें, तो आमतौर पर लोग जिल्लत का काम समझ, बतौर इलाज के वो काम करे जिसे साहबे किराम किया करते थे, बतौर इलाज के वो काम करे साहबे किराम भी किया करते। तो कभी कभी है ना, कुकुटोनी भी खींच लिया करे तो बहुत अच्छा रहेगा मर्दों के लिए तो। जितना हम सामान उठा सकते हो तो बोले चल आज आज मैं तेरी मदद करता हूं अपना इलाज कराने के लिए। देखो हजरत उमर रदिल्लाहु ने अपना इलाज किया था। देखो हजरत फारूक आजम रदिल्लाहु उन्होंने एक शानदार जुब्बा पहनकर खुतबा दिया। वो जुब्बा बहुत पसंद आया और अपना सरापा अच्छा मालूम हुआ, यानी अपने आप को जरा अच्छा लगा, तो थोड़ी देर के बाद वो जुब्बा उतारा। जब्बा उतारा और मशक उठाकर, वो पानी भरने की जो एक मटका होता था, मशक उठाकर कमर पर लादी और पानी भरकर लोगों के घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। पानी भरकर लोगों के घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। किसी ने आपसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? अब देखो अमीरुल मोमिनी ने, क्या आप ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे, चूंकि मेरे दिल में उजब का ख्याल आ गया था, इसलिए इसके जरिए मैं इस उजब का इलाज कर रहा हूं। कि मेरे दिल में उजब आ गया था तो मैंने तो जुब्बा तो उतारा, लेकिन अब और भी पानी भरने के लिए मशक को उठाया और घर घर जाकर पानी दे दिया। दो कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। तो ये है इलाज। तो कभी ऐसा हो जावे तो इलाज कर लिया करो, बहुत अच्छा इलाज है ये। कभी कभी घर में भी बर्तन मांज लिया करे तो वो भी इलाज हो जाएगा। काम वाली नहीं आई है तो अब उसका मतलब भी थोड़ी है कि हमें बर्तनों को, बल्कि हम भी घरों में बैठकर बर्तन मांज लिया करें, ये भी अच्छा इलाज है। क्योंकि आमतौर पर ये करते नहीं हम, और तो उसको करेंगे तो खुद ब खुद हमें, हमारे अंदर बहुत बहुत फायदा होगा। करके देखो, मैंने अमल किया है, मुझे बहुत फायदा हुआ है। मोहब्बत तो बढ़ेगी वो और अपनी जगह पर, तकब्बुर का इलाज होगा वो अच्छा होगा। जी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु और गवर्नरी, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु दरस तदरीस के काम में लगे रहते थे। उनको सियासत से कोई गरज नहीं थी, पॉलिटिक्स से कोई गरज नहीं थी, बस अपना पढ़ना पढ़ाना बस और कुछ काम है। एक मरतबा बहरेन के गवर्नर छुट्टी पर जा रहे थे, उनकी जगह पर उनको गवर्नर बना दिया गया। अब ये पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे और उनको बना दिया गवर्नर। चूंकि दरवेश आदमी थे, अल्लाह वाले थे, सारी उम्र काल अल्लाह काल रसूल में गुजारी थी, सारा दिन गवर्नरी के काम में मशगूल रहते, तो शाम को लकड़ियों का एक गट्ठर अब गवर्नरी करते, बड़े बन गए, मिनिस्टर बन गए। सारा दिन गवर्नरी का काम में मशगूल रहते और शाम को लकड़ियों का एक गट्ठर सर पर रखते और बाजार के दरमियान से इस तरह गुजरते कि आवाज लगाते जाते कि हटो मेरा अलमू अल, हटो अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, हटो अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। अब अमीरुल मोमिनीन और ऊपर से सर पर गठरी लकड़ी की वो भी, और फिर क्या कह रहे, यानी देखो कितनी जिल्लत वाले काम। एक तो गठरी उठाई जिल्लत, और फिर कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन आ रहे, तो लोग भी कह गए यार अमीरुल मोमिनीन और सर पर गठरी। तो ये अपना इलाज कर रहे हैं, देखो हटो अमीरुल मोमिनीन आ रहे, अमीरुल मोमिनीन। गोया के रास्ते में लोगों को, वरना वरना तो अगर गठरी लेके चले भी जाते तो जानता कौन, हो सकता है जैसे आम लोग चले जा रहे थे ये भी चले गए। तो गोया के रास्ते में लोगों को मुतनबी भी करते जाते कि अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, जिसके सर पर लकड़ी का गट्ठर है, ये काम इसलिए करते कि कहीं गवर्नरी की शान की वजह से दिमाग में तकब्बुर पैदा न हो जाए। इस तरह से अपना इलाज खुद किया। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना भारी काम है। इसकी मश्क करें, कभी इसे काम करें। इसीलिए जब खुद बखुद नहीं करता है ना इंसान, उसका नफ्स मानता नहीं है, तो फिर शेख की जरूरत पड़ती है, फिर शेख उससे करवाता है, तो फिर दिमाग ठिकाने हो जाता है। इसलिए अगर खुद बखुद इलाज ना हो तो फिर इसकी जरूरत पड़ती है, और अक्सर खुद बखुद होता ही नहीं, कभी एक आध मरतबा हो जाएगा, लेकिन हमेशा जिसको कहते हैं तकब्बुर की बीमारी जड़ से निकल जाए, ये बहुत कम ही होगा खुद बखुद करने से। हाँ, शेख की ताबेदारी में होगा। अब देखो हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े आलिम थे, लेकिन वो भी तलबा के जूते उठाना उठाते। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुबुल इरशाद, इमाम वक्त और इस जमाने के अबू हनीफा थे, इसे जबरदस्त इल्म वाले थे, उनको उनके जमाने के अबू हनीफा कहते थे, के लकब से मशहूर थे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अरवाहे सलासा में उनका वाकया लिखा है। अरवाहे सलासा एक किताब, उसमें अजीब अजीब वाक्य हैं, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएंगे इसलिए नहीं पढ़ते, बाकी बुजुर्गों के वाकया थे। अरवाए सलासे में उनका वाकया लिखा है कि हजरत वाला एक दफा सबक पढ़ा रहे थे और बारिश शुरू हो गई, सबक पढ़ा रहे थे और बारिश शुरू हो गई, तो तलबा से फरमाए कि अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। तलबा अपनी अपनी किताबें लेकर अंदर जाने लगे, और हजरत वाला तलबा के जूते समेट कर अंदर ले जाने लगे। उस्ताद ने तलबा को तो पहले भेज दिया, अब उस्ताद क्या करता है? उस्ताद ने, और वो भी मामूली नहीं, इतने बड़े उस्ताद, वो तलबा के जूतों को समेटा और उसको अंदर लेके गए ताकि वो बारिश में भीग कर खराब ना हो जाए। अल्लाह अकबर, कैसा काम! ये थे अल्लाह वाले के जिनके अंदर तवाजु थी। आज तो ऐसा ढूंढोगे ना, ढूंढोगे तो शायद कहीं मिल जाए, वरना मिलना भी मुश्किल है, ऐसे लोग ही नहीं रहे। आज तो हर एक के अंदर इतना इतना तकब्बुर और किब्र भरा हुआ है, कहीं जबान से, कहीं अमल से, कहीं किससे, कहीं किससे, माल वाला हो या गरीब हो, हर एक के अंदर। वजह यह है कि जानते ही नहीं है कि ये भी एक गुनाह है और ये भी एक बीमारी है। तो ये देखो हर हर चीज खुल के सामने आ गई है, और ये मर्दों में भी और औरतों में भी, हर एक में ये बीमारी होती है, हमें इसका इलाज करना चाहिए। तो ये तलबा के जूते दो वजह से उठा रहे थे, देखो उठा रहे थे तो उनकी तो नियतें होती थी, ये ऐसे ही काम नहीं करते थे कि पागल हो गए कि चलो इस तरीके से करते हैं, जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू हुरेरा के गठरी लेकर चले गए, तो कौन कर सकता है आदमी जिसका दिमाग खराब हो गया? नहीं, ये अपने नफ्स का इलाज करते थे। वो जानते थे कि मेरे अंदर तकब्बुर आ गया है, बड़ाई आ रही है, उसका इलाज फौरन करते थे। तो ये तलबा के जूते दो वजह से उठा रहे थे, एक अपने इलाज की गरज से कि कहीं मेरे अंदर तकब्बुर का शाइबा पैदा ना हो जाए, और दूसरी वजह ये थी कि जब इंसान ये इलाज कर लेता है तो उसका नफ्स मुजक्की और मुजल्ली हो जाता है, यानी साफ होता है, और जब अल्लाह वाले का नफ्स साफ हो जाता है तो उसको ये बात गैर मामूली मालूम नहीं होती कि मैं तलबा और शागिर्दों के जूते उठा रहा हूं, बल्कि एक काम भी उसके मामूल का एक हिस्सा बन जाता है। जब इंसान के दिल का तस्किया हो जाता है, सफाई हो जाती है, तो फिर उसको ऐसे काम करने से कोई भी, यानी कोई कोई वो मालूम ही नहीं होता है, शर्म ही महसूस नहीं होती है, बल्कि उसमें क्या है, नॉर्मल काम होता है, वो उठावे हम उठावे क्या हो गया। और जब इंसान अपने आप को समझता है तो ऑर्डर करेगा, ए चलो ये उठा लो, वो उठा लो। जी, तो थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से भी करना पड़ता है, तो उसमें भी तकब्बुर का इलाज होता है। जी, अब देखो, यानी वो किससे बता रहे हैं कि इन्होंने देखो कैसे कैसे अपना इलाज करते थे, यानी ऐसे काम जो आमतौर पर जिल्लत वाले हैं वो भी हम करेंगे तो उससे भी तकब्बुर का और किब्र का इलाज होगा। तो उस काम में किन्होंने किए, उसके किस्से आ रहे हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने किया, हजरत और हजरत, अभी एक और किस्सा है सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम गुजरे, ये कोई ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है, ये हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना 50 साल पहले ही गुजरा है। हजरत मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की जमाने में हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। हकीम उल उम्मत हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हजरत सैयद सुलेमान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेंगे। अब ये आलिम थे सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी तो आलिम भी थे, अल्लाह वाले भी थे, तो ये अपनी इस्लाह के लिए आए। पूरे हिंदुस्तान में जिनके इल्म का डंका बज रहा था, सीरत नबी के मुसन्निफ मुहक्किक के वक्त और सियासी एतबार से भी लोगों के अंदर मशहूर और मारूफ थे हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह। इल्म में भी जबरदस्त, सीरत नबी पर उन्होंने किताब लिखी और मुहक्किक थे और सियासत भी जानते थे, लोगों के अंदर मशहूर और मारूफ भी थे। हजरत सैयद साहब खुद बयान फरमाते, सैयद साहब खुद बयान फरमाते, मैं जब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास से रुखसत होने लगा, तो मैं हजरत से अर्ज किया कि हजरत कोई नसीहत फरमा दे, हजरत कोई नसीहत फरमा दे। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ये इतने बड़े आलिम है और मुझसे कह रहे हैं कि मैं नसीहत करूं। अजमरता लोग कहते हैं कुछ नसीहत करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो तो अल्लाह ताला दिल में डालते हैं कि ये कहो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया नसीहत करो या अल्लाह ऐसी नसीहत दिल में डाल दीजिए जो उनके हक में फायदा मंद हो। तो उस वक्त बेसाख्ता मेरे दिल में बात आई कि हमारे यहां अव्वल व आखिर एक ही चीज है, वो ये कि अपने आप को मिटा देना। उनके दिल में एक बात आई कि अपने आप को मिटा देना। तो हजरत सैयद साहब ने फरमाया हजरत कुछ नसीहत कीजिए। तो हजरत सैयद साहब फरमाते हैं, इन्होंने कहा कि बात कहते हुए हजरत थानी रहमतुल्लाह ने अपने हाथ को झटका दिया, वो झटका मेरे दिल पर ऐसा लगा कि उसी वक्त गिरिया तारी हो गया, रोना आ गया, उसी वक्त रोना आ गया। हमारे हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया करते थे कि उसके बाद हजरत सैयद साहब ने अपने आप को ऐसा मिटाया, ऐसा मिटाया कि मैंने ऐसे बहुत कम नजरे देखी है कि इतने बड़े आलिम ने अपने आप को ऐसा मिटाया हो। बताओ, आए थे मिलने के लिए, मिल के जा रहे हैं, सिर्फ एक जुमला कहा हजरत कुछ नसीहत कीजिए। अब इतने बड़े आलिम और हजरत से नसीहत, हजरत अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए हजरत थानी रहमतुल्लाह, और दिल में बात आई कि अपने आप को मिटा दो और मिटा दो, और जुमला कहने में हाथ को ऐसा झटका है, फरमाया दिल में ऐसी बात लगी और उन्होंने अपने आप को मिटाया। फरमाया अपने आप को ऐसा मिटा, इस तरह मिटाया कि मैंने एक दिन हजरत सैयद साहब को देखा कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली की मजलिस के बाहर हाजिरी ने मजलिस की जुतियां सीधी कर रही थी, इतना मिटाया। जो मजलिस में आते हैं ना, तो उनके जूते सीधी कर रहे थे, इतना बड़ा आलिम, सियासत में माहिर, इल्म में माहिर, महक्किक आदमी, और इस तरीके से कर रहे थे, तो कैसे मिटाया होगा अल्लाह। इसीलिए जिन्होंने अपने आप को मिटाया है ना, अल्लाह ने उनसे काम लिया है। याद रखो, जितना भी दीनी काम हुआ है, जिससे उम्मत को फायदा हो रहा है, वो दीनी काम ऐसे लोगों ने किया है जिन्होंने अपने आप को मिटाया था। वरना किताबें तो बहुत सो की है जिनके अंदर किब्र और तकब्बुर था, उनकी किताबों से तो सिर्फ इल्म फैला है, लेकिन यानी इल्म मालूमात मिली है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में तब्दीली नहीं आई। इसीलिए हमारे हजरत और उलमाए किराम फरमाते हैं, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ो कि जिनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह का ताल्लुक था, जिनकी जिंदगी के अंदर सिफात थे, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी सिफात मुंतकिल होंगे। और अगर ऐसे लोगों की किताबें पढ़ेंगे जिनकी जिंदगी में सिफात नहीं है लेकिन इल्म है, तो हमारे पास सिर्फ इल्म आएगा, सिफात नहीं आएगी। याद रखना, कुरान की तफसीरें हमारे बुजुर्गों ने भी लिखी है, और कुरान की तफसीरें दूसरे ऐसे उलमा ने भी लिखी है जो नाम के आलिम थे, अल्लाह का ताल्लुक नहीं था। आप दोनों तफसीरें पढ़ोगे लेकिन उसके पढ़ने से सिर्फ मालूमात मिलेगी, इनके पढ़ने से अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा। अल्लाह तो या इसलिए हर एक की किताब न पढ़ा करें। ऐसे ही मोबाइल पर जो मैसेज आते हैं ना, मैसेज, उस मैसेज के पढ़ने से भी दिलों में जुल्मत आती है, याद रखना, उसको न पढ़ा करे। खुसूसन ऐसे ही जो दीनदारों के कुछ दीनी बातें हो, जो उनकी खुद की, वो भी दूसरे से सप्लाई करते हैं, तो ऐसों को न पढ़े, इसलिए कि मैसेज लिखने वाले ही, जो जिनके दिलों में जुल्मत होती है, वो मैसेज के जरिए से हम पढ़ते हैं, हमारे दिलों में जुल्मत उतरती है और हमें पता भी नहीं चलता है, दिलों में जुल्मत उतरती, याद रखे। हाँ, इसका एहसास आपको नहीं हो रहा है? और उसी वक्त में जो अल्लाह वालों ने अपने हाथों से जो मैसेज लिखे होंगे और उसको आप पढ़ो, तो आपके अंदर वो चीज उतरेगी, आपके दिलों में नूरानियत आएगी। इसलिए इसलिए अपनी जरूरत के वक्त उसको इस्तेमाल करें, बिना जरूरत इधर उधर के ग्रुप में रहकर और इधर उधर के मैसेज को पढ़ना और भेजना। वो भेजना दावत नहीं है, सब कहते उसको भेजोगे इतना फायदा होगा, ये कुछ नहीं है, ये उनका फायदा हो रहा है। आज हमारा ईमान कमजोर हो रहा है सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए से, वहां की अलग अलग तरीके से जो पिक्चर आ रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें आ रही, उसी के जरिए से हो। इसलिए उसके अंदर बहुत एहतियात से काम ले। तो हजरत डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने देखा कि हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह से दरी में बैठकर तसनीफ का काम कर रहे थे। हजरत सैयद साहब, सैयद सुलेमान नदवी साहब, दूर ऐसी जगह पर खड़े होकर हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह को टिक टिक्की बांध कर देख रहे थे। जहां से हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह उनको न देख सके, ऐसी जगह से देख रहे थे। मैं अचानक पीछे से, ये डॉक्टर कौन है? ये डॉक्टर अब्दुल हई साहब, जो हजरत थानवी के खलीफा है और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के शेख है, दामत बरकात उनके शेख है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह से देख रहे थे कि हजरत थानवी उनको न देखे और वो उनको देख रहे थे। तो बोले, मैं अचानक पीछे से उनके करीब पहुंचा और कहा कि हजरत यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मेरे सवाल पर अचानक चौंक पड़े, कहा कि कुछ नहीं, मैंने जब इसरार किया तो फरमाया कि मैं ये देख रहा था कि सारी जिंदगी जिन चीजों को उलूम समझते रहे, देखो बहुत बड़ा आलिम क्या कह रहा है, कि मैं ये देख रहा था कि सारी जिंदगी जिन चीजों को उलूम समझते रहे वो तो जहल साबित हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, कि सारी जिंदगी जिन चीजों को उलूम इल्म समझता रहा, फरमाया वो तो जहालत थी, उलूम तो इन बड़े मियां के पास है। अल्लाह अकबर, उलूम तो इन बड़े यानी हजरत थानवी के पास है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत सैयद साहब को वो मकाम बख्शा कि खुद उनके शेख हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में शेर कहा, अद सुलेमान गिर इखलास अमल दातु नदव नदवी रह मंजिल अज दखल अज दगल। ये शेर हजरत थानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयद साहब के बारे में कहा। बहरहाल अपने आप को मिटाना पड़ता है तब जाकर कुछ बनता है। क्या हुआ खुलासा? अपने आप को मिटाना पड़ता है तब जाकर कुछ बनता है। मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जी, किसी के दर पर रगड़े खाए बगैर ये चीज हासिल नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि शेख की निगरानी में ये अमल करे। बस यहां तक रखते हैं, इंशाल्लाह तीसरी बातें कल करेंगे। हाँ जी, शेख की निगरानी में सारा अमल करना। तो देखो बहुत अजीब बातें हैं तकब्बुर के इलाज की, वो पॉइंट लिख देना अपने पास कि तकब्बुर के इलाज के खुद ब खुद कितने कितने तरीके हैं। हाँ जी, थोड़ी देर मुराकबा कर लें।